आप सभी को पता होगा कि मेडिकल विंग और भारत सरकार द्वारा इनके बीच में एक एमओयू बना हुआ है नशा मुक्त अभियान के लिए। और हमेशा हम देखते हैं कि बनारसी भाई आज अभी 3-4 दिन यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस के निमित्त, लेकिन हर स्टेट में उनका जाना हो रहा है और नशा मुक्ति के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो एक बार जोरदार उनका स्वागत कर रही है डॉक्टर वैशाली।
ओम शांति। ये बहन नशा मुक्ति अभियान जो हमारा भारत नशा मुक्त अभियान चल रहा है उसका ले आई है कि पूरे भारत में हमारी दादी ने शुरुआत किया है। आज भारत सरकार टाइम रुपए में 2 मिनट दो तो मैं खड़े खड़े बताना चाहूंगा
जरूर जरूर
कि नशा मुक्ति पर हम लोग बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत लोग काम कर रहे हैं, 10%, 20%, 30% रिजल्ट मिलता है। हमको कितना रिजल्ट मिलता है लाइफ स्टाइल अपनाने से? 97% रिजल्ट मिलता है। और जब भारत सरकार को पता लगा तो भारत सरकार ने दादी जी को निमंत्रण दिया, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट से चीफ सेक्रेटरी ने निमंत्रण दिया, दादी आप नशा मुक्ति पर काम कर रही हो, भारत को नशा मुक्त बना रही हो, हम लोग भी बना रहे हैं, हमको इतना रिजल्ट नहीं मिलता है, हम आपके साथ एमओयू साइन करना चाहते हैं, हम भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी मिलकर करना चाहते हैं। 4 मार्च को हुआ और आज कितना प्रोग्राम किया होगा, पूरे जितने स्टेट में है सभी स्टेटों में प्रोग्राम किया है, कम से कम 25,000 से भी अधिक हम प्रोग्राम कर चुके हैं 4-5-6 महीने में। अब हम 28 को आए और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में कैपिटल में गए, गवर्नर 1.5 घंटा तक अपने गवर्नर हाउस में बुला करके और बातें किया कि नशा मुक्त, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत नशा लेते हैं, क्योंकि बाजू से ही आता है, उधर से ही आता है, तो उनको चिंता है, उनको ये है। उन्होंने कहा कि नहीं आप दूसरे जगह नहीं ठहरिए, आप हमारे यहाँ ही आइए। राजभवन में उन्होंने 2 दिन रखा और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। आप सब आए हैं और मिल करके हम सब बहुत अच्छा भारत को जल्दी नशा मुक्त बनाएंगे, स्वर्ग लाएंगे। ये भारत स्वर्ग था और हम सब फिर से लाएंगे और हम सब देवी देवता बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। 10 अक्टूबर को शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में, महाराष्ट्र से मैं आई हूँ, कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी जो हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन रखा हुआ है और पूरे जितने भी हमारी तहसील है, करीबन 14 तहसील है और 14 तहसील हम एक हफ्ते में कवर कर रहे हैं, एक हफ्ते में। माने इतनी हमारी टीम अभी इतनी मजबूत तैयार है, सभी डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा, और हमारी सेंटर की बहनें भी बहुत सुंदर इसमें भाषण भी करती है नशा मुक्ति के बारे में। भाई साहब का बहुत योगदान रहा है। तो मुझे एक संकल्प आया कि ये जो अमृत महोत्सव का एक उपलक्ष्य है और इसी में हमने एक ट्रॉफी भी बनाई हुई है, आप सभी नशा मुक्त है ही है, एम आई राइट? यस, थैंक यू वेरी मच। तो इसमें विजयी रत्न पुरस्कार दिया हुआ है, डॉक्टर प्रकाश मणि जी विजयी रत्न, आप विजयी है और विजयी बन करके रहे और पूरे भारत को फिर से हम विश्व गुरु बना करके रखे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
अभी हम कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे स्कूल में लास्ट पीरियड होता है तो क्या होता है, सारे जन खुश होते हैं कि इसके बाद क्या करेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस का आप क्या कहेंगे, ये अंतिम सत्र कहे, समापन कहे, या इसको आप शुभारंभ कहेंगे? हाँ, आपके जीवन का नया शुभारंभ शुरू होने जा रहा है। कल से आप अपने वर्किंग प्लेस में जाएंगे, 3 दिन आप कंटिन्यूशन में सुनते आ रहे थे और आज का ये सत्र रहेगा, इसमें हम आपसे सुनेंगे कि आपने इन 3 दिनों में क्या अनुभव किया है। तो उसके पहले जब तक आप अनुभव अपने सुनाने के लिए तैयार हो, तो आज के सेशन के हमारे जो मेहमान हैं उनको मैं बुलाना चाहती हूँ। सर्वप्रथम डॉक्टर बनारसी भाई तो ऑलरेडी हमारे आ ही चुके हैं, तो उनके लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे डॉक्टर उषा किरण, डॉक्टर उषा किरण जी, जिनको आपने पहले भी सुना होगा और अभी उनकी हम प्रेरणाएं भी सुनेंगे। डॉक्टर सविता हमारे बीच में आए हैं, वुमेन्स विंग की हमारी हेडक्वार्टर की चेयरपर्सन है डॉक्टर सविता। डॉक्टर ब्रिजेश हमारे बीच में है, डॉक्टर ब्रिजेश को भी हम बुलाएंगे। डॉक्टर ब्रिजेश भी आइए, आइए डॉक्टर सविता। डॉक्टर उल्लास हमारे बीच में नागपुर से पधारे हुए हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि डॉक्टर उल्लास आप भी आइए। और सर्वप्रथम हम कार्यक्रम की शुरुआत 2 मिनट परमपिता परमात्मा की याद से करेंगे। मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को निमंत्रण देती हूँ कि बैच और फ्लावर्स द्वारा हमारे मेहमानों का स्वागत करें। और आप लोग कैसे स्वागत करेंगे? दोनों हाथ तालियां हो, एक हाथ की तालियां हो। डॉक्टर सविता, डॉक्टर बनारसी भाई जी, जो हम गए हैं हमारे मेडिकल विंग के, आप पूरी जो कॉन्फ्रेंस है उसके लिए जी जान लगा देते हैं। डॉक्टर उषा किरण, तालियों में कमी ना होनी चाहिए। डॉक्टर उल्लास नागपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं और आप सभी को पता होगा कि 15 दिन पहले ही हमारा ज्ञान सरोवर का कैंपस है, वहाँ भी इसी प्रकार से डॉक्टर्स के लिए माइंड बॉडी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी और 15 डेज के बाद ही तुरंत यहाँ हो रही है, क्योंकि डॉक्टर बनारसी भाई को ऐसे लगता है कि इतने सारे हमारे डॉक्टर्स हैं तो मैं उनको कैसे ये परमात्मा का नॉलेज मैं कैसे उन तक पहुँचाऊँ। और इसीलिए जब भी चांस मिलता है, भले वो 15 डेज का गैप कर न हो, वो पूरा उस चांस को ग्रैब कर लेते हैं। और 15 डेज के अंदर, 15 डेज पहले ज्ञान सरोवर माउंट अबू में जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वहां डॉक्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी और अभी आप सभी के लिए हुई है। तो अभी हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारा ये रहेगा कि इन तीन दिनों में आपने जो अनुभव किया है, विशेषकर क्योंकि ये पहली कॉन्फ्रेंस आपके जीवन की होगी कि जिसमें आपने 4 बजे उठकर मेडिटेशन किया है ना, ऐसे ही है ना, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि कोई भी अदर कॉन्फ्रेंस में 4 o'clock उठकर मेडिटेशन करने के लिए नहीं कहा जाता है। और फर्स्ट डे से आपको इनॉग्रल सेशन से यही कहा गया था कि अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कर अपने आप में शक्ति भरनी है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और इन तीन दिनों में शिवानी बहन ने, दीदी ने भी आप में बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है अपने स्पीचेस द्वारा। और अभी आप लोगों ने भी जो एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके आधार पर अपने लिए कोई प्लान्स बनाए होंगे कि हम हमारे वर्किंग प्लेस पर जाकर इस प्रकार से करेंगे, हमने जो ये 3 दिन में सीखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। लेकिन उसके पूर्व मैं डॉक्टर उषा किरण जी को कहूंगी कि वो अपनी प्रेरणाएं आप लोगों को दे कि वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर उषा किरण जी हमारी भारत की राजधानी ना, भारत का जो दिल है दिल्ली, दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल आता है एम्स हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल में आप कार्डियक डिपार्टमेंट के हेड, एनेस्थेसिया के हेड थे और उस समय उन्होंने बहुत सारे रिसर्च भी किए हुए हैं कि कैसे अपनी सर्विस करते हुए, जॉब करते हुए, मेडिटेशन करते हुए उन्होंने किस प्रकार से रिसर्च किए हैं, उसके बारे में भी वो आपको बताएंगे, शायद बताया भी होगा। और इतने दिनों में मुझे याद नहीं है कि उषा किरण दीदी ने एक दिन भी अपने मुरली क्लास मॉर्निंग की मिस की हो। पहले वो मुरली क्लास अटेंड करते थे और उसके बाद वो अपने जॉब पर दिल्ली में जाते थे। तो हम सुनेंगे डॉक्टर उषा किरण दीदी से प्रेरणाएं आप लोगों के लिए।
थैंक यू रूपा दीदी। ओम शांति। मैं आपसे पहले भी मिली हूँ और यही बात हुई है, वास्तव में जो भी क्रेडिट जाता है मेरी सक्सेस का इन माय प्रोफेशन और इन माय लाइफ, जो भी मैंने अचीव किया है, द क्रेडिट गोज टू ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारीज का आपको लग रही है छोटी छोटी बहनें जो हैं हमारा स्वागत करने आती हैं, ये छोटी छोटी बहनें नहीं हैं, ये बहुत महान हैं, ये बहुत ऊंची हैं, यही मुरली सुनाती हैं वहाँ पे। क्योंकि अभी तो सुना आपने ना ब्रह्मा बाबा हैं, ना वो दादियाँ रही, एक दादी हैं उनको भी बड़ी मुश्किल से हेल्थ को वर्क कर रखा हुआ है, 99 ईयर्स की हैं। तो परमात्मा का कार्य और चलाने वाले ये सब यहाँ के भाई बहने, आपने देखे कितने यंग तो बहुत जगह काम करते हैं, पर उनकी पवित्रता ये सबसे बड़ी एनर्जी है। मन वचन कर्म प्योर, संबंध संपर्क प्योर, दृष्टि आपने देखी कहीं बिगड़ते हुए, एकदम प्योर। ऐसी तो फैमिली में भी नहीं होता है जो इस डिवाइन फैमिली से मुझे बचपन से मिला, तो मेरा कर्तव्य बनता था उसके लिए कुछ करना। जब हमें कुछ मिलता है और वो ईश्वर से मिला तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको, जैसे हम कहते हैं ना मातृ ऋण पितृ ऋण, ये तो बहुत बड़ा ईश्वर के ऋणी है हम और ईश्वर के बच्चों के ऋणी है। खाना किसके हाथों से बन रहा है यहाँ पे? पवित्र ब्रह्मचारी भाई बहने, आपके घर में आपका बेटे को कोई खाना बनाए बनाएगा क्या? हमारी हिम्मत ही नहीं होती कहने की भी तू आज चाय तो बना दे पिला दे, ये भी नहीं कह सकते हैं। और यहाँ कौन ईगोलेस निराकारी निरहंकारी निर्विकारी लोग अपने हाथों से घर बार छोड़ के, बड़े रईस फैमिलीज के सारे लोग हैं, कोई कम नहीं है, पर बना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवाधारी समझते हैं अपने आप को, तो हम तो बहुत ऋणी हैं। तो ये सोच के मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, हमें ईश्वर का ऋणी नहीं बनना है, ये बहन भाइयों का ऋणी नहीं बनना है, तो हमें क्या करना होगा? तो जानकी दादी ने एक बार मुझे कहा था, बोले ऐसी भोजन खा लेते हो बिना सेवा किए बिना ज्ञान सुनाए। मैंने बोला दादी रोज तुम्हें मुरली सुन के जाती है ना, सुनाती किसको है? और सच में बात तो ठीक है, सुनाती किसको है। और मैंने एक इंसिडेंट सुनाया था ना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ये एक बार नहीं बहुत बातें हुई, क्योंकि दुनिया में पॉलिटिक्स और दूसरे को नीचे गिराना ये तो कॉमन बात है। तो मैंने एक काम किया, जब बाबा ने कहा हुआ है कि आपको किसी को पहले देना है तो क्या देना है, ये ज्ञान को किस रूप से दे सकते हैं। एक तो आप अपना सुना सकते हो, सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आज तो सुनने वाले बच्चे को भी सुनाओ तो कहता है छोड़ो छोड़ो ये बातें मुझे ना सुनाया करो, तो फिर अब मुश्किल हो। तो इसलिए रिसर्च शुरू किया। रिसर्च में 1995 में मुझे पहली ग्रांट मिल गई थी एम्स के अंदर से कि हम इसको रिसर्च करेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर ये किया था हमने, सिंपल जो हेडेक होती है ना, मसल कंट्रक्शन हेडेक, टेंशन हेडेक, उसके ऊपर स्टार्ट किया था एक स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट। और उसमें न्यूरोलॉजिस्ट अपने हेडेक के पेशेंट भेजते थे और हम हेडेक को विद मेडिसिन प्लस मेडिटेशन से उनको ठीक करना शुरू किया। इतनी अच्छी रेपुटेशन हो गई, अरे यहाँ जो पेशेंट कहते हैं कि हमारा डॉक्टर जो है ना वो हमारी सिर दर्द ठीक नहीं कर सकता, इतनी सिर दर्द होती है, और यहाँ तो 3 महीने मेडिटेशन के बाद क्या हो जाता है, सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। उनकी परफॉर्मेंस, मोस्टली स्टूडेंट्स थे, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई कॉम्पिटिशन में। तो जब न्यूरोलॉजिस्ट को पता लगा इतने अच्छे रिजल्ट है, बोली मैं मान ही नहीं सकती हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो खुद फिर यहाँ आई माउंट आबू, डॉक्टर माधुरी बिहारी जो वहाँ पे हेड थे वो आके देख के गई कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। 3 बार उन्होंने चक्कर लगाए। उसके बाद बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट हमने और निकाले, एपिलेप्सी पेशेंट जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है बहुत ज्यादा, और यंग को होती है एपिलेप्सी, ड्राइविंग मना हो जाती है। पार्किंसन पेशेंट्स, चलिए पार्किंसन पेशेंट तो छोड़िए, पार्किंसन डिजीज के केयर टेकर्स कोई नहीं हमने छोड़ा जिसकी रिसर्च ना की हो और पेपर पब्लिश हुए हों। हर एक का पेपर पब्लिश किया। और वही बॉसेस जो हमारे अगेंस्ट थे ना, वो बोलते थे अरे उषा अब कौन सी रिसर्च कर ली, मेरा नाम भी तो डाल देना अब इसमें, तो ऐसे वाला हो गया। और एक कंडीशन ये थी कि मुझे सिखाना है, तो जब सिखाना है भोजन ही नहीं कर सकते। दादी ने कहा था जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाया तो वो मेडिटेशन रूम और उसमें नर्सेज, उसमें डॉक्टर्स सब आने लगे। और मेरे रिटायरमेंट के बाद भी वही रूम चल रहा है। इवन डायरेक्टर ने मुझे बुलाया कि इसको कंटिन्यू करिए, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और अभी तो लास्ट उन्होंने फेलिसिटेट किया एम्स के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में पहले योगा आया था, अब एम्स की डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में मेडिटेशन भी एक सब्जेक्ट आ गया है एज ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव थेरापी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाबा की प्रेरणा से कैसे बाबा हमें आगे बढ़ा देता है, तो उसकी कमाल है। हम तो कृतज्ञ हैं, आभारी हैं उनके, जो इसका ऋण कभी भी नहीं उतार पाएंगे। बनारसी भाई, उनकी टीम, ये ब्रह्मा कुमारी, सभी एक से एक हम सबके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा किरण जी। हमने सबसे पहले उनका अनुभव इसलिए रखा कि उनको अभी जाना है, तो 7:30 बजे वो हमारे बीच में से उठेंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले हम सारा उनका अनुभव सुनेंगे। कहते हैं चांद अधूरा है सितारों के बिना, सागर अधूरा है किनारों के बिना, वैसे ही ये कॉन्फ्रेंस अधूरी है आपके अनुभव बिना। तो जब तक आप लोग अनुभव नहीं सुनाएंगे तो हमारी कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं होगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आपसे अनुभवों की लेन देन। तो कौन पहला नंबर लेना चाहेगा, आइए प्लीज। आप लोग प्लीज आकर खड़े रहेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, और जिनको भी सुनाना है प्लीज आकर वहां उस सोफे पर बैठ जाएंगे तो इजी रहेगा हमें।
ओम शांति। थोड़ा सा बाबा के बारे में लिखा है तो वो आपके सामने पेश करती हूँ। ओ मेरे खुदा, शर्मिंदा हूँ खुद पर, इतनी देर बाद आपको जाना है, पर खुश भी हूँ, देर सही पर यथार्थ पहचाना है, सही पहचाना है। कहाँ अंधियारे में जी रही थी, जागृति हुई प्रकाश में अब जी रही हूँ। गुरु किए थे मैंने 4 पर मिला ना प्रकाश, अब मिला है सच्चे सतगुरु का साथ। भूल भुलैया से मुझे निकाला है, मिटा दिए सारे अंधविश्वास। आपको भूलू ना बाबा, अब मैं श्वासों श्वास। गलत राह पर चल रही थी, जिंदगी ने लिया ऐसा मोड़, अब नहीं है मेरी किसी से भी होड़। बाप की श्रीमत काम कर रही है, मंजिल सामने दिख रही है। जब हो सही राह फिर मंजिल दूर नहीं, जब हो सच्ची प्रभु मिलन की चाह, फिर वो प्रभु तुमसे दूर नहीं। अब इतराती हूँ अपने नसीब पर, परमात्मा के हूँ इतनी करीब। ईश्वर को पाना है नामुमकिन, कहीं इस भ्रम में बेकार न कर देती सारी उम्र। अब जो उसको पाया है, दिल को करार आया है, जीवन सार्थक किया है, तो रूह को सबर आया है। एक दिन छोटा सा अनुभव सुनाते हैं,
और शॉर्ट में सुनाते। आप अपना नाम भी बताइए और आपकी स्पेशलाइजेशन कहाँ से आए हैं वो भी बताइए।
इस देह का नाम डॉक्टर संतोष अग्रवाल है और मैं दिल्ली से आई हूँ, वसंत कुंज से। अब 5 साल का बच्चा हूँ मैं, चौथी बार यहाँ आई हूँ माउंट आबू, यहाँ शांतिवन में। सुना था ईश्वर को पाना है मुश्किल, पढ़ा भी था ईश्वर को पाना है नामुमकिन, इम्पॉसिबल। पर मन में था पक्का विश्वास, एक दिन जरूर पूरी होगी मेरी ये आस। ना जाने क्या ढूंढती रहती थी मेरी ये आंखें, ना जाने क्या थी इनकी प्यास। बाबा जब से देखा आपका ज्योति स्वरूप, दिल बार बार कहता ये वही है, वही है जिसकी थी मुझे युगों से तलाश। ऐसा देखा तेरा नूर जो उतरता ही नहीं, चढ़ा ऐसा सरूर हटती नहीं आपसे नजर। इतने हो तेजोमय फिर भी इतने शीतल, आपके सामने फीका लगे कोहिनूर। वो जो बाबा को देखा है, वो जो प्रकाश, वो बेहिसाब दिव्य आलोक, सुनहरी रंग बिरंगी किरणें करें इशारे अपनी ओर मुझे खींचे। चकित हो मैं निहारती रही, अल्फाज नहीं कैसे करूं बयान वो छवि निराली। इतनी गजब की इतनी आलीशान, सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह। दिल की सुनी वीणा के बज उठे तार तार, छिड़ गई सुनहरी झनकार। देखा जो वह सुहावना मन भावना दृश्य, झूम उठा दिल करने लगा नृत्य। बस गया है वो उजियारा नजरों में इतना प्यारा, हे विचित्र ऐसा चित्र है दर्शाया मन मेरा हर्षाया। बताओ तो जरा मेरे रूप बसंत, कहाँ से पाया इतना रूप अनंत। ओ मेरे दिल नशीन कितने हो हसीन, देखे बिन दिल भरता ही नहीं। बस थोड़ा सा और। ओ बाबा मेरे इतने हो वंडरफुल, इतने हो ब्लिसफुल, कैसे ना आपकी तारीफ के बांधू पुल। चुंबक सी है आप में कशिश, आप एक माशूक के हम लाखों हैं आशिक। आप क्षमा पर मर मिटने को हैं आतुर, ओ ज्योतिर्मय आपका शुक्रिया शुक्रिया, मेरे जीवन का हर लम्हा ज्योतिर्मय है किया। बाबा हमने तो जाना जब लगन हो सच्ची और सुची, आप आते हो मिलते हो अनुभव कराते हो सच मुच्ची ओम शांति ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, वैसे हमारी जो इनर पावर्स होती है वो और डेवलप होती है। देखो इतनी बड़ी एज में इतना व्यस्त होते हुए भी इन्होंने कितनी अच्छी सुंदर कविता लिखी है परमात्मा के लिए, तो एक बार जोरदार हम उनके लिए तालियां बजाएंगे।
ओम शांति। मैं मनोज सोनी, जनरल सर्जन, हिसार, हरियाणा। सर्वप्रथम मैं ब्रह्म कुमारी संस्था का आभार प्रकट करता हूँ जो मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में दूसरी बार आने का मुझे सौभाग्य मिला है। यहाँ शिवानी बहन, उषा बहन, बनारसी भाई, प्रेम मशन भाई, अन्य जितने भी भाई बहनों ने हमें जो सिखाया, जो बताया, प्रयास करेंगे कि आगे भी उनको हॉस्पिटल में और इम्प्लीमेंट करें। मेरी जो की लर्निंग रही है यहाँ की, तो अपनी लाइफ है वो एक पेंसिल की तरह होनी चाहिए जिसमें हम ये देखें कि गुण है वो अंदर है, जितना हमें तपाया जाए, शार्प किया जाए, उतना हमारे में निखार आता है। जहां भी चलें अपना एक निशान छोड़ के जाएं, और अगर शिव बाबा जैसा इरेजर अपने साथ हो जो अपनी गलतियों को मिटा दे, उनमें सुधार करने की गुंजाइश करें, तो लाइफ बहुत ही सुखमय और आसान हो जाती है। गणित में एक फार्मूला हम देखते हैं कि प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस होता है, प्लस माइनस वो माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। ये सीख भी मुझे पिछली कॉन्फ्रेंस में मिली कि एग्जैक्टली ये होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तब यहीं से मैंने सीखा कि पहले प्लस का मतलब है अच्छा काम, माइनस का मतलब है बुरा काम, दूसरा जो प्लस है उसका मतलब है कर रहे हैं, और माइनस का मतलब नहीं कर रहे। तो प्लस प्लस अच्छा काम है और कर भी रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अच्छा आता है। प्लस माइनस अच्छा काम है लेकिन कर नहीं रहे हैं तो माइनस रिजल्ट आता है। माइनस प्लस बुरा काम है लेकिन कर रहे हैं तो माइनस रिजल्ट आता है, और माइनस माइनस बुरा काम है और कर भी नहीं रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले मैंने विहासा सत्र भी अटेंड किया था, वैल्यू इन हेल्थ केयर ए स्पिरिचुअल अप्रोच, उसकी बुक भी मैंने ली है। हिसार एक बहुत बड़ा मेडिकल हब है, डॉक्टर्स खूब हैं, मेरे साथ भी काफी डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो हमारा अगला प्रयास ये रहेगा कि हम वहाँ भी विहासा सत्र आयोजित करें। कमला बहन से मिलना हुआ था, वहाँ ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर वो सत्र भी हमारा मन है कि हम अटेंड करें, उसमें सीखें और आगे भी उसको करें, और मुझे उम्मीद है कि बाबा की कृपा से ये हो जाएगा। दूसरा जो मुझे चेंज करना है, हॉस्पिटल के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नो एंगर जोन बनाना है, क्योंकि शिवानी बहन ने बताया कि अगर आप टेंशन में हो, स्टाफ टेंशन में है, तो उसकी वाइब्रेशन से पूरे पेशेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा आप सबसे भी प्रार्थना रहेगी कि अपने हॉस्पिटल को, अपने घर को, अपने ऑफिस को नो एंगर जोन जरूर बनाइए। थर्ड जो उन्होंने बताया, जिसकी मैं आज से ही पालना करनी है, कल से पालना करनी है, कि भोजन से पहले उसको वाइब्रेशन देनी है, पानी को वाइब्रेशन देनी है, हॉस्पिटल क्लिनिक में जाते टाइम पानी अपने घर से लेके जाना है, तो इन सब का और भी जो दैनिक दिनचर्या में मैक्सिमम मैं प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सबके जीवन में भी ये जो MBM का सत्र हुआ है ये बहुत ज्यादा प्रेरणादायक रहेगा, आपके लिए लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी हो, जैसा भी समय मिले, आप भी आइए, अपने साथियों को ले आइए। एक बार पुनः बनारसी भाई का दिल से धन्यवाद, आभार। ओम शांति।
मैं एक पावरफुल सोल हूं, लेकिन मेरा ये शरीर जो है 70 इयर्स का है, उसका नाम है डॉक्टर देवो प्रसाद। आई एम ए डायबिटोलॉजिस्ट बाई प्रोफेशन एंड आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये मेरा चौथा बार तो बनारसी भाई का कृपा से हम इधर आए हैं। तो जो तीन दिन का हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम गया वो इतना अच्छा था, उसका रेटिंग तो मैं दूंगा 10 out of 10 स्कोरिंग। और जितने स्पीकर थे वो इतना अच्छी तरह हमारा मन से शुरू करके टन को और अर्न को सबको कैसे हम लोग बाबा का जो बताया हुआ मार्ग से उसमें परिचालित किए, तो हम बहुत आभारी है बनारसी भाई जी का। बाकी रहा, मैं 7 सालों से हम ज्ञान में हूँ, 7 सालों से। तो हम रोजाना मुरली नहीं पढ़ेंगे तो मेरा वो दिन खराब जाएगा। तो मुरली से मेरा इतना प्यार है, मैं सेंटर जाके बहनिया के साथ बैठ के अभी कभी कभी वो हमको रिक्वेस्ट करते, भाई जी आप थोड़ा मुरली सुनाइए। तो आई एम रिप्लेसिंग सम डेज सम सिस्टर्स। अच्छा, ये हुआ। बाकी रहा हमारा एक्टिविटी रिगार्डिंग राज योगा मेडिटेशन। हमारा भुवनेश्वर में एक ओपन एयर जेल है जहाँ कुछ आत्माओं ने है। तो हमने यूनिट 8 भुवनेश्वर जो दुर्गेश नंदिनी बहन जी है उनको लेके हम एक ग्रुप बनाए, और एक डॉक्टर भी है उसका नाम है डॉक्टर धीरज भाई, वो मैं और एक निरंजन कौर नाम के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, हम तीनों वहाँ जाके ओपन एयर जेल में हफ्ता में एक बार उनको मेडिटेशन सिखाते हैं। और ये रिसर्च पेपर जो है अभी हम कर रहे हैं, उसका नतीजा मैं शायद 6 महीने का बाद निकल जाएगा, लेकिन सफल हो रहा है। वो जेलर बताते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो कमाल का कर दिए। बाकी रहा सेकेंड, बिकॉज आई एम ए डायबिटोलॉजिस्ट, तो मेजोरिटी ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स दे आर मेंटली डिस्टर्ब, मोस्ट ऑफ देम आर डिप्रेसिव। सो इन यूनिट 8 भुवनेश्वर वी हैव ए वीकली क्लिनिक ऑफ डायबिटीज। उसी क्लिनिक में हम लोग उनको ये जो मेडिटेशन राज्यों का मेडिटेशन सिखाते हैं, वो भी सफल हो गया है। तो लोग बोलते हैं हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, डॉक्टर साहब हम नॉन वेज थे अभी तो वेज बन गए, और हमारा शुगर भी डाउन हो रहा है। तो ये काम भी मैं ले चुका हूँ। बाकी रहा थर्ड पॉइंट मेरा, ये नशा मुक्त अभियान जो है अभी मैं सुन के बहुत खुशी हो गया, जे ब्रह्म कुमारी जो सेंटर है हमारा वो MOU साइन हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। मैं 10 साल पहले भुवनेश्वर में एक था सहारा ड्रग डिएडिक्शन सेंटर, मैं उसका इंचार्ज था। तो जब इंचार्ज बन गया तब मेरा कोई स्पेशलिटी नहीं था, स्पेशलाइजेशन नहीं किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो दिल्ली, वहाँ साइकेट्री डिपार्टमेंट का अंडर में हमको 3 महीना का ट्रेनिंग दिया गया। और वो याद है हमारा वो दीनदयाल हॉस्पिटल हरिनगर में था, और डॉक्टर रजत राय ही वॉज द इंचार्ज, एंड आई हैव लॉन्च इट। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस उनका अंडर में मैं काउंसिलिंग में भी हम एक कोर्स किया 15 डेज का। तो मैं सार से निवेदन कर रहा हूँ, हम तो उड़ीसा में रहता हूँ, अगर मेरा कोई जरूरत है मैं सेवा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो इतना सा बात है, मैं राजयोग मेडिटेशन में संपूर्ण डेडिकेटेड हूँ। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच।
Myself Dr. Pratibha Tekade. Actually, I have done UG and PG from Nagpur University only. But I have came from Pune. I am MD in ENT, Ophthalm Head of the Department. And because of my student only, Dr. Savita, she is here. Clap for her. Because of her only I came in this conference. Actually, 1st September में जो conference था, उसमें 25 years above experience के कारण उसमें भी selection हुआ था. लेकिन my daughter is doing MBBS MD in Ukraine. At that time, we have done meditation. मैं जो join हुई हूँ, वो online class से join हुई COVID के time. तो श्रीकांत भाई जी जो है, संतोष भाई जी है, हम नुमा शाम में और every Thursday, we are giving positive vibes to all the patients who are diseased. At that time, they all have done meditation for my daughter also because war was there in Ukraine and all the children were there. Then so many problems were there. They were very much solved. And I am very much thankful to Baba also. As there were problems and after solving all the problems, they were shifted. You know that Mission Ganga was there, Modi ji started that and they all returned to India. At that time, our mentally, we were very much disturbed. Feelings are there for them. And these sessions, all the sessions are very, very nice. And Shivani Didi told that aap idhar side mein aayenge ki stage mein bhi aana hai. तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो बहुत सारे रिसर्च वर्क भी हमारे हुए हैं. हो सकता है आगे में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में हम आएंगे. जैसे गुरु शिष्य परंपरा अभी मेरी स्टूडेंट मुझे लेके आई तो आगे में मैं भी दूसरों स्टूडेंट को लेके आऊंगी. बहुत बढ़िया सब चल रहा है. मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये मेडिटेशन के द्वारा ये सब हो रहा है. ये बहुत बहुत ही मीन्स टेरिफिक और सरप्राइजिंग और ट्रिमेंडस बिल्कुल ऐसे रिजल्ट है. और जो सुना है शिवानी दीदी भी तो उनसे हम बहुत इम्प्रेस हो गए हैं. तो ऑनलाइन कोर्सेज तो हमारे जारी है अभी भी.
बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा.
थैंक यू.
जो आपने यूक्रेन का बात किया है ना, ये बहुत अच्छा कहा क्योंकि मैं भी एम्स से रिटायर हो गई हूँ तो बहुत सारे बच्चे इंटर्न सब यूक्रेन से भारत में एडजस्ट किए गए. उनके पेरेंट्स को भी बच्चों को भी स्ट्रेस था तो मुझे ऑफर आया. देखिए, एक तो है कि आप ऐसे अपने प्रोफेशन से काम करते हैं, दूसरा ऑफर आया कि आप आ जाइए, वी टेक यू एज ए विजिटिंग प्रोफेसर. एक नया कॉलेज है, ज्यादा नया नहीं है, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो झज्जर में है, हरियाणा में ही है. उन्होंने स्पेशल ऑफर किया कि आप आ जाइए और आपको हम विजिटिंग प्रोफेसर ले लेते हैं, ऑनरेरियम देंगे हम आपको. मैंने बोला वो बात नहीं है, मैं तब आऊंगी जब आप मुझे मेडिटेशन रूम देंगे. बिकॉज मेरा पर्पस होता है कि जब तक मैं मेडिटेशन रूम में किसी को कराऊंगी नहीं, सिखाऊंगी नहीं, उसके मैं खाना भी नहीं खाऊंगी. कहते अच्छा, इतनी बात है आपके साथ. मैंने बोला हाँ, ऐसे ही रहेगा. तो काफी यूक्रेन के, रशिया के और जगहों के बच्चे वहां एडजस्ट किए हुए हैं उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से, है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. तो बोले हम कैसे दे सकते हैं आपको ब्रह्मा कुमारी का, लोग और भी आ जाएंगे कि हमारे को भी फिर रूम दे दो. तो मैंने बोला जो हमारी रिसर्चेज हुई है, ICMR की लास्ट रिसर्च हुई है, उसमें मेडिटेशन रूम को हीलिंग लेबोरेटरी का लेबल दे दिया गया और हीलिंग लेबोरेटरी बनाएंगे. इमीडिएटली 21 जून को मई में मैंने ज्वाइन किया. 21 जून योगा वाले दिन उन्होंने बहुत बड़ा हीलिंग लेबोरेटरी बना के सब कुछ कर दिया और अभी बहुत स्टूडेंट डिप्रेशन से और साइकोसोमेटिक डिजीज से बाहर आ गए हैं. ये बाबा की कमाल है.
या थैंक यू दीदी. और यूक्रेन के बाद में हम लोग भी बहुत सेटिस्फाइड हुए क्योंकि बहुत डर था तब मन में. और यहाँ हमें महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों से जो बहुत दिन के बाद में बिछड़े हैं, जैसे सिकलेदे बच्चे बाबा हमें कहते हैं, वैसे सबसे मुलाकात हुई. जो पुराने दोस्त बहुत दिन कोविड के बाद में जैसे कोई मिला नहीं था तो यहाँ इस सेशन में, इस कॉन्फ्रेंस में उनसे मिलना हुआ. तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा को. धन्यवाद.
थैंक यू वेरी मच.
ओम शांति. मेरा नाम डॉक्टर सविता वाले है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आयुर्वेद महाविद्यालय में. और मेरी सासू माँ है जिनका पिछले 25 सालों से वे यहाँ पे जुड़े हैं इनसे. तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि एक बार तू जाकर माइंड ये डॉक्टरों का ही है, मेडिकल विंग है, एक बार तुम्हें जाना है। तो फिर मैंने मैडम को भी साथ में लिया और यहाँ आने के बाद एक तो मेरी सासू माँ भी थी, वो रोज अमृत वेला करती हैं। मैं सोचती थी कि इतनी तबीयत ठीक नहीं है उनको, मतलब सुबह होने के बाद फिर से ठीक से, मतलब जब भी काम करते वक्त उनको नींद आती है। मैं बोलती क्यों उठते हो आप इतने जल्दी, क्यों उठते हो ऐसे, मैं उनको बार बार बोलती रहती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वही एक एनर्जी देती है पूरे दिन भर को चलाने के लिए। और मेरे को खुद को ऐसे विश्वास नहीं होता था कि मैं 4 बजे उठ पाऊंगी। तो मैं फर्स्ट दिन तो 4 बजे उठी, लेकिन दोपहर को लग रहा था कि नींद आएगी मुझे जरूर, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। और मैं अभी मैडम है, उनकी एनर्जी को देखकर मेरी भी एनर्जी आई। वो रोज मतलब 3:30 बजे उठते हैं और मुझे भी उन्होंने उठाया। और मैं अभी जो अभी शिवानी दीदी ने बात की है कि आपको 3 महीने ये करना है, तो मैं यहाँ पे वादा करती हूँ कि मैं पक्का 3 महीने तो पक्का करूंगी, आगे भी करते रहूंगी। 4 बजे उठना और रोज मुरली सुनना, ये 2 नियम मैंने अभी ठान लिया है मुझे करना ही है। और अभी जस्ट देखा मैंने यहाँ पे मेरा नाम भी आया है डॉक्टर सविता करके तो नेक्स्ट टाइम ये, इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं नेक्स्ट टाइम मेरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बैठ के शेयर करूंगी।
बहुत बढ़िया,
थैंक यू।
ओम शांति। मैं ब्रह्म कुमारीज के संसार में जस्ट अभी पैदा हुई हूँ ऑलमोस्ट। मेरा नाम डॉक्टर तेजस्विता सिंह है। मैंने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से MBBS किया है और 2020 में MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कंप्लीट किया है। एंड अभी मैं सुपर स्पेशलिटी DRNB कर रही हूँ एक्शन कैंसर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। तो लगभग 6 साल से ऑन्कोलॉजी में हूँ एंड ऑन्कोलॉजी इज रियली अ वेरी इमोशनली ड्रेनिंग ब्रांच। तो जब तक मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में थी आई वॉज वेरी हैप्पी कि सब ठीक है। नाउ एज वी शिफ्ट टू मेडिकल ऑन्कोलॉजी वी डेली फेस Stage 3, Stage 4 पेशेंट्स। एंड सिंस 5-6 months मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम वेरी इमोशनली ड्रेन्ड। मुझे बहुत हमेशा थकान लगती रहती थी एंड स्टिल थकान लगती थी। स्टिल आई यूज टू स्लीप एट 2 AM एंड वेक अप एट 6-7 AM। नींद नहीं पूरी होती थी। नाउ आई वाज थिंकिंग हो क्या रहा है, मैं रोज थकी ऑल टाइम जाती थी। आई थॉट मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ऐसे तो नहीं चल सकता है। देन माई मदर इज अ वेरी, वो कभी ऐसे बहुत ही आर्डेंट फॉलोअर है ब्रह्म कुमारीज की। पिछले 2-3 सालों से हमारे घर में अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज के अलावा TV पे शायद ही कुछ चला है तो उस टाइम तो मैं इतना सीरियसली नहीं लेती थी, बट जैसे ये एड आया इसका तो माई मदर यूज टू डेली टेल मी कि जाओ जाओ, ठीक है मेरे लिए चली जाओ एटलीस्ट। तो सोचा फिर कि मेडिटेशन करना है, सीख के देखते हैं एक बार होता क्या एग्जैक्टली, क्योंकि यूट्यूब मेडिटेशन कांट बी लर्न फ्रॉम बाय सीइंग यूट्यूब, यू हैव टू प्रैक्टिकली डू इट अंडर सम गाइडेंस। सो यहाँ पे आई एंड सीखा एग्जैक्टली एंड आई एम श्योर आई विल इम्प्लीमेंट इट। पहले खुद को बहुत पॉजिटिव बनाऊंगी एंड देयर आफ्टर 3-4 months आई थिंक आई विल बी एबल टू ट्रीट माई पेशेंट्स इन अ बेटर वे। थैंक यू।
थैंक यू, बहुत अच्छा।
ओम शांति। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरी 2 weaknesses बताना चाहूंगी। एक्चुअली मुझे पब्लिक स्पीकिंग में फियर होता है, तो मैं बाबा को साथ लेके खड़ी हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज है कि मैं गुजरात से हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो आप लोग मुझे माफ करना अगर कहीं जगह पे मैं रुक गई, हकला गई, ऐसा कुछ हुआ तो। मैं वलसाड़ से हूँ, डॉक्टर रूपल पटेल मेरा नाम है, वलसाड़ गुजरात से आई हूँ। मेरी जो बाबा के साथ जर्नी है पूरी ऐसी रोलर कोस्टर जैसी है। बचपन से ही मैं आध्यात्मिक रही हूँ और बचपन से ही ऐसी इच्छा थी कि कहीं ना कहीं मैं भगवान को पाऊं। फिर जब मेरी दूसरी प्रेगनेंसी, जब मैं सेकेंड टाइम कंसीव हुई, देन आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। सो अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं मन से रेडी नहीं थी, इसीलिए वो मेरे 9 महीने बहुत डिफिकल्ट गए। लेकिन वो टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे श्रीमद् भागवत गिफ्ट किया था मेरी माँ बोली कि तुम ये पढ़ना, तुमको शक्ति मिलेगी। मैंने बोला ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, वैसे वैसे ऐसी इच्छा होने लगी कि जो सतयुग आएगा, जब जब श्री कृष्ण का जब एक जन्म बाकी है, तो मुझे वहां उसमें रहना है। भले ही मैं प्रत्यक्ष ना हो पाऊं, लेकिन मुझे उस संसार में जाना है। शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि मैं भगवान के प्रत्यक्ष हो पाऊं, लेकिन मुझे उस जन्म में रहना है, वो वातावरण को महसूस करना है। तो जब आज आई, जब शिवानी दीदी ने बोला कि आप रिफ्लेक्ट करिए अपनी पूरी जर्नी को, पूरी लाइफ को, तो मैं पता नहीं, मैं ये तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई कि मेरी लाइफ में मैंने क्या मिस्टेक्स की, मेरे क्या कर्म गलत हुए, शायद मैं ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन मैं ये पूरा रिफ्लेक्ट कर पाई कि मैं आज यहाँ पे क्यों आई हूँ। क्योंकि जो मेरी इच्छा थी 2016 में, वो आज 2023 में यहाँ सफल हुई है। मैं जब 2016 में मेरी बेटी, दूसरी बेटी जब 8 months की थी, तो आई हैड पुट ऑन सो मच ऑफ वेट। और वो बच्ची का आपको पता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, दो बच्चों को रखना, हॉस्पिटल जाना, बच्चे रात में सोते नहीं है, तो आई वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस समवेयर। एंड आई थॉट व्हाट कैन आई डू। सो मैंने पहले सोचा, अपने को मिरर में देखा, मैंने सोचा पहले तू अपना फिजिकल अपीयरेंस ठीक कर ले, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तेरे को, फिर आगे आगे तुमको ऊपर से कुछ मिलता जाएगा, तुमको इंट्यूशन। तो हमारे वहां पे वलसाड़ में एक सेंटर है, तो वहां पे मैं गई, वेट लॉस सेंटर है वहां पे, तो वो मुझे देखती रहती है रोज, मैं जाती हूँ मुझे देखती है, वो ब्रह्म कुमारी फॉलो करती है, 13 साल से वो फॉलो करती है, तो वो मुझे देखती है। एक दिन उसने मुझे बिठाया, मैडम आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको रोज देखती हूँ, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने उसके साथ शेयर किया कि ये सब प्रॉब्लम है मेरा, तो उसने मुझे बोला कि आप शिवानी दीदी का वीडियो है यूट्यूब पर, बस आप देखते रहिए। मैंने बोला कि मेरा मन अभी ऐसा नहीं है कि मैं और कुछ कर पाऊं। उन्होंने बोला बस आप वीडियो देखते रहिए, आपको शांति मिलेगी। तो मैं वीडियो देखती रही, शांति मिलती गई, लेकिन फिर मैं गिरी, फिर लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आए, मैंने छोड़ दिया ब्रह्म कुमारी। फिर ऐसा कुछ आया कि फिर से मैंने शुरू किया कि चलो मैं फिर से अभी शुरू कर रही हूँ। ऐसे ऐसे करते करते मैं धीरे 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 ये स्टेज पे आई कि अभी मुझे ये हो रहा है कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे मुरली करनी है, लेकिन जैसा सब बोलते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, वैसा मेरा ही है कि मेरे पास समय नहीं है। और मैं रोज बोलती हूँ कि मैं कब 4 बजे उठ के मुरली करूंगी। और मुझे माइग्रेन हो गया सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद, तो माइग्रेन हो गया, तो मैंने एक बार शुरू भी किया, सुबह उठ जाती थी 3 बजे, फिर मुरली करती थी, फिर से सो जाती थी। लेकिन क्या होता था, जल्दी उठती थी ना तो माइग्रेन इतना शुरू हो जाता था कि मेरे अपने क्लिनिक पे मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर से कंफ्यूज हो गई, अब क्या करूं। फिर मैंने ये ट्राई किया कि चलो नहा धो करके बैठो तो तुम्हारा अवेयरनेस शायद ऊपर हो जाएगा, फिर भी नहीं, फिर मैंने फिर से छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो मुरली तो हम लोग कर सकते हैं, तो मैं कभी भी दिन में टाइम मिला मुरली करती रही करती रही करती रही, धीरे धीरे बाबा के नजदीक जाती रही, जब भी टाइम मिला मेडिटेशन करती रही। फिर जब मुझे पिछले साल ये पता चला कि ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो पिछले साल मैंने सोचा कि मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगी। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आई, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। फिर पता नहीं मुझे बाबा इंट्यूशन देते थे, बोले तुम अभी रेडी नहीं हो आने के लिए, तुम अभी मत आओ, तुम जब रेडी हो गए तब तुम आना। मैंने बोला ठीक है। फिर ये साल जब आया, तो ये पिछले साल में मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही, मैं पूरा साल बाबा के टच में रही, और मेरे कुछ क्वेश्चंस रहे बाबा के साथ, तो मैंने बोला कि अभी कॉन्फ्रेंस में जाके ही मेरे क्वेश्चंस क्लियर करूंगी। जैसे हम लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ना, तो जैसे मेरी सर्जरी में कोई भी प्रॉब्लम होता है, कौन कन्फ्यूजन, मैं लिख के जाती हूँ कि मुझे ये सब क्लियर करके आना है, तो मैं यहाँ पे भी ये सब लेके आई थी। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरी नींद, माइग्रेन। तो मैंने सोचा था, बाबा की मुरली में सुना था, आपके जो दुख दर्द जो कीचड़ वीचड़ सब है मुझे देके जाओ, तो मैंने बोला मैं यहाँ पे ही देके जाऊंगी। तो मैं तय करके आई थी कि मेरी नींद, मेरा माइग्रेन मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊंगी। फिर भी श्योर नहीं थी, तो जिस दिन आई बनारसी सर ने बोला कि कल सुबह 4 बजे आ जाना, तो फिर माइंड में वो कंफ्यूजन शुरू हो गया कि आऊं ना आऊं। सोचा चलो कल जाते हैं, देखते हैं कैसा है एक्सपीरियंस। मुरली में आई, जाके फिर से सो गई मैं। फिर जैसे आई, कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, सब सेशंस गए गए, मैंने खुद को ऑब्जर्व किया, मेरी स्टेट ऑफ माइंड को ऑब्जर्व किया, ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे सर दर्द हो रहा है। और दूसरी चीज, मुझे क्या होता था, जब मैं सुबह जल्दी उठती तो रात को 9 बजे मैं ड्रेन हो जाती थी। 9 बजे के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है मेरा, मैं पूरा ऐसे सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती हूँ। मैं बस ऐसे करती हूँ कि मुझे ये करना है करना है करना है, कुछ भी मन से नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं कल 11 बजे तक जागी, 2 बार मुरली सुनी और मुझे बिल्कुल भी हेडेक नहीं है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ब्रह्म कुमारी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरी चीज, मैं क्या संकल्प लेके यहाँ से जाऊंगी, तो मैं 2 संकल्प लेके जाऊंगी। एक चीज है, हमारे हर एक ऑपरेशन में मैं बाबा के सॉन्ग्स लगाती हूँ, मैं हर एक ऑपरेशन में बाबा को साथ में लेके चलती हूँ। लेकिन आज शिवानी दीदी ने बोला कि आप ऑपरेशन थिएटर का एनवायरमेंट भी ठीक करो, तो मैं वो करूंगी कि टीम के साथ मेडिटेशन करूंगी 5 मिनट, उसके बाद सर्जरी स्टार्ट करूंगी। दूसरी चीज कि मैंने ये देखा कि जिन हार्ट पेशेंट्स को ठीक नहीं हो रहा है उनको ये लोग ठीक करते हैं। तो मेरे पास 2-3 पेशेंट है सीवियर ड्राइनेस के पेशेंट्स है, जो लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसे आज मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, कल फिर से आ जाता है और मुझे हमेशा बोलती है। एक आंटी है मेरी, पेशेंट है, वो मुझे ऐसा बोलती है कि भगवान ने इतना सारा कुछ बनाया, मेरी आंखों के लिए कोई ट्रीटमेंट ही नहीं बनाया क्या, वो ऐसे मुझे बोलती है। तो मैंने यहाँ पे तय किया है कि मैं वो आंटी को इंस्पायर करूंगी, उनको मेडिटेशन सिखाऊंगी और उनको ठीक करूंगी। थैंक यू सो मच, ओम साई।
थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी थोड़ा शॉर्ट में अपने अनुभव शेयर करेंगे तो और लोग ये कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि थोड़ा शॉर्ट में इन 3 दिनों में आपने क्या अनुभव किया है, प्लस आपका क्या जैसे एक्शन प्लान है आगे के लिए, आपने क्या सोचा है अपने लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए, जो भी वर्क प्लेस है।
मेरा नाम स्मिता है, हाँ मैं राजकोट से आई हूँ। हाँ, वैसे तो मैं 2013 में आई थी। मैं एक राजकोट की एजुकेशन डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन थी तब, तो सोशल विंग को लेकर आई थी। 11 तारीख थी, दिसंबर मंथ था, और 2013 तो 11-12-13 के दिन आई थी।
सॉरी मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, डॉक्टर उषा किरण जी हमारे बीच में से छुट्टी ले रहे हैं, तो हम एक बार तालियों से उनका थैंक्स करेंगे। डॉक्टर उषा किरण, कई हमारे भाई बहने अभी निकल रहे हैं तो उसके लिए डॉक्टर उषा के सारे आपके लिए थैंक्स कर रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन।
हाँ, तो 11 दिसंबर और 2013 के साल, तो 11-12-13 को मैं आई थी और इधर जानकी दादी थी, और वो दिन हमको ट्रॉली दिया था, शाल भी पहनाई थी, तो मेरा मेरा बर्थडे था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जानकी दीदी, मैं क्या बताऊँ, यहाँ मुझे कितना क्या एंजल हुआ था। मैं बाहर निकली इधर से और जानकी दादी, मुझे लगा कि इतनी कोई बड़ी दादी आ रही है तो उसका हाथ तो पकड़ना चाहिए ना। मैं सामने ही थी तो मैं उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई, तो बाद में मुझे पता चला ये तो जानकी दादी है। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं आई थी वो दिन, मुझे जानकी दादी सामने मिले और उसके हाथ पकड़कर मैं ये स्टेज पर लाई थी, तो मैं मेरे भाग्य को बहुत अभाग्य मानती हूँ। तो मैं मुरली सुनती थी, मैंने 3 साल किया, कोर्स भी किया, बाद में मेरा छूट गया है ना। लेकिन एक मुझे प्रसंग में कहने बिना नहीं रह सकूंगी कि मैं मुरली सुनती थी, ध्यान करती थी, मेरी बेटी जो है वो इंजीनियर, उसको बच्चा नहीं था, 15 साल हुआ गया, तो मैंने ये ध्यान का सकास मेरी बेटी को दिया और उसको 14 साल के बाद उसको बेटा हुआ। और दूसरा क्या हुआ कि जब उसकी डिलीवरी का टाइम था तो मैं दीदी जो है ना ब्रह्मा कुमारी दीदी का सकास लिया, उसके बाद वो हॉस्पिटल गई तो बेटे का जन्म हुआ तक क्या चल पाया पता है, उसके ये कपाल में शिव का त्रिशूल था, ये शिव बाबा का ही देन बोल रही हूँ मैं, इतना अच्छा मुझे ये मिला। तो दूसरा मैं ये बताऊ, 10 साल के बाद में आई, बीच में छूट गया मेरा कनेक्शन छूट गया, लेकिन 10 साल के बाद में आई तो यहाँ इतना अच्छा लगा, पता नहीं ये खाने का रहने का सब लोगों को, ये जो हमारी जो परवरिश की, ये बाबा ने हमारी परवरिश की तो भूल नहीं पाई, अभी मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी मैंने तय किया है कि मैं जो 10 साल भटक गई ना, अब मैं नहीं छोड़ने वाली, यहाँ आती रहूंगी, मुरली भी सुनूंगी और ध्यान डेली करूंगी। थैंक यू।
सिर्फ आते नहीं रहना है, औरों को भी साथ लेकर आना है।
ओम शांति। मैं एक भाई आत्मा हूँ, मेरा शरीर का नाम है डॉक्टर एम एन बोमास, मैं कर्नाटक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे को माइंड एंड बॉडी मेडिसिन में आने के अवसर हमारे जो गांव में सेंटर है वो सेंटर से मिल गया। इधर आने के बाद इस सब सेशन अटेंड किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को कैसे प्रॉब्लम को कैसे रिएक्ट करना, सॉल्यूशन कैसे निकालना है और पेशेंट के साथ कैसे पॉजिटिव एनर्जी तैयार करना है, हॉस्पिटल में कैसे पॉजिटिव एनर्जी लाना है, वो सब सीख गया। वो मैं जाके अभी मेरे हॉस्पिटल में अभी मैं कोशिश करूंगा ऐसे क्रिएट करने के लिए। जो जब प्रॉब्लम घर में आया, जो हॉस्पिटल में आया, उसको कैसे सॉल्व करूं, वो मैं इसके लिए अभी बहुत तैयार हो गया। इसके वो जाके मैं अभी प्रैक्टिकल से कर सकता हूं। मेरा और एक रिक्वेस्ट है आपके सेंटर से, आपका सेंटर जो है सब अच्छे गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन है, सब अच्छा रिलेशन है। मेरा कर्नाटक गवर्नमेंट में एक स्कूल के बच्चों में दोपहर के भोजन में अंडी एक दे रहे, हमको अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हम सब उधर हमारे गांव में जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो सब मिलके एक गवर्नमेंट को लेटर लिखा है। आपके सेंटर से भी एक लेटर, बेलगाम के सेंटर से भी हम लेटर लिया है। तो पूरा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है, वाइस चीफ मिनिस्टर है, उधर का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको, उधर इधर सेंटर में सीएम को, और आप राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी वो जो आपका फॉलोअर है उनको भी सब लेटर लिखा है कि बच्चों को अभी आपने जो बोला कि जैसा खाओ जैसा मन होएगा, इसके लिए एग वो प्रोटीन के वास्ते एग दे रहे। हम लोग ये लिखा कि वेजिटेबल प्रोटीन बहुत अच्छा है एनिमल प्रोटीन से। इसके लिए आपके सेंटर से मेरे को एक रिक्वेस्ट है कि आप कर्नाटक गवर्नमेंट के एक लेटर लिख के ये एग अच्छा नहीं है और वेजिटेबल प्रोटीन अच्छा है और वो प्रमोट करो और वो दे दो। इसके लिए हम लोग, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और बनारसी भाई से भी मेरे को रिक्वेस्ट करने थे का वो अभी लेकिन चले गए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा करने से वो भी अच्छा होएगा और वो प्रमोट भी हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू।
ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट हम डॉक्टर बनारसी भाई तक पहुँचाएंगे, और आपकी जो भी ब्रांच है लोकल नियरेस्ट ब्रांच उसके साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे ऑलरेडी आपने लेटर लिया हुआ है बेलगांव से।
ओम शांति, ओम शांति। आप लोग भी बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बा भाई मधुबन, बा बोलिए बोलिए, आप लोग भी बोलिए, आवाज आया, ताली बजाइए। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और हम तालियां बजाएं, कितना हम लोगों का काम किया, उसके लिए तो हमको धन्यवाद, वाह वाह तो देना चाहिए।
वाह बाबा वाह कह रहे हैं, तो एक बार जोर से सभी कहेंगे। आप थोड़ा माइक से।
अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर एम आर तिवारी हूँ और मैं रीवा से आया हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MBBS है, मैंने DNB फैमिली मेडिसिन से किया है। डायबिटिक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कार्डिक डिजीज, इम्यूनाइजेशन, इनमें हमने सर्टिफिकेट कोर्स PHFI दिल्ली से किया हुआ है। ये तो हमारी क्वालिफिकेशन है। मैं इसके पहले सर्विस में था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चीफ हेल्थ अफसर था। मुझे करीब 12 साल 15 साल हो गए रिटायर हुए हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि म्युनिसिपल टीस में सबसे खराब घृणादायक काम जिससे हम लोग निकलते हैं और नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, उस काम को मैं कराता था। कितना बड़ा काम, जो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था देखने का काम करता है। हमारे घर के सामने कचरा पड़ा रहा था, हम जाके नाली फेंक देते थे, गली फेंक देते। उस संस्था का, उस विषय का कराने वाला, शुभ करने वाला मैं डॉक्टर हूं। तो हमारी स्थिति तो समझ सकते हैं कि मैं एक जमीनी सबसे निचले स्तर का आदमी। अब मैं यहां क्यों आया, प्रश्न उठता कि भाई ठीक, इतना बड़ा कार्यक्रम है तो हमको ऐसी जानकारी नहीं थी। मेरे यहां अंजना बहन जी, जो कि वहां सेंटर है, मुख्य सेंटर रीवा में है, उसमें काम करती। एक दिन घर में हम बैठे थे तो हमारे मोबाइल में एक मैसेज आया कि माइंड बॉडी मेडिसिन का एक यहां पर 4 दिवसीय सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स आमंत्रित हैं। तो हमको देखने में हमने कहा यार है काहे का, ये लिखा था माइंड बॉडी मेडिसिन, तो इसको हम समझ नहीं पाए थे क्योंकि हम कभी इस विषय से या इस स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस से, मेडिसिन जिसमें कि डॉक्टर्स की भागीदारी हो, उसमें कभी हमने अटेंड नहीं किया था। सेमिनार ठीक अपने विषय के किए होंगे, पर इस टाइप का हमको पहला था। तो हमने फोन किया, हमने कहा क्या है ये, बताएं कब है, कैसे, क्या है, क्या है प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब चलिए। तो हमने कहा कितने डॉक्टर सीवा में जा रहे हैं, आप लोग तो बहुत दिनों सेंटर चला रहे हैं। तो बोले 8-10 डॉक्टर्स हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम भी चलेंगे, सोच लें। 2-4 हमारे फ्रेंड डॉक्टर्स थे, हमने कहा चलो यार घुमाए देखते हैं क्या है। ब्रह्म कुमारी इसका बड़ा नाम सुना है, सीधे सी बात है, मैं बहुत प्रैक्टिकल वाली बात करता हूं। योगों की संस्था चलाते हैं, योग से संबंधित है, ये कौन सा है डॉक्टरों से संबंधित, क्या हो सकता है डॉक्टरों को योग बताना हो। तो मेंटली मैं इस टाइप के प्रिपेयर हुआ, 2-4 मिनट टाइम देंगे बहुत ज्यादा। इसके विषय में जब डॉक्टर से बोले कि टाइम नहीं है, समय नहीं है, सब ठीक है, प्रैक्टिस वाले डॉक्टर थे, तो हमने कहा जाने के लिए मैं तैयार हुआ और यहां पर आया। तो सबसे बड़ी बात, जब यहां मैं आया तो देखा, कि पहले यहां की व्यवस्था मैंने देखी, क्योंकि मैं जिस संस्था से था तो हमारी पहली निगाह कहां जाएगी, हमारी निगाह जाएगी साफ सुथरा है कि नहीं है। तो मैंने जो देखा, चौहट हट सुबट दी थी, चार पूर्व बहु बना, इसका मतलब हुआ कि यह सुंदर वन, मधुवन जिसको कहें, है ना, जहां के मधुर ही मधुर लोग, मिठाई मिठाई लोग, सब वो रस बसता मधु बसने, कितना सुंदर बसा हुआ है। यहाँ के चौराहे, यहाँ की सड़कें, यहाँ के बगीचे, यहाँ के घर, यहाँ के बगले इतनी साफ सुथराई कि स्वर्ग में भी ना होगी। स्वर्ग की अगर कल्पना करें, देखें लोग कि हमको स्वर्ग में जाना, स्वर्ग कैसा होता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि मधुबन में आए और देखें कैसा होता है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से कहेंगे आप इतना पैसा खर्च करते हैं सफाई व्यवस्था में, इतना ये सब चीजें हैं, आप मधुबन में अपनी टीम क्यों नहीं भेजते थे, कैसे वहां इतना सफाई व्यवस्था करते, कैसे सफाई है, हमने एक डस्ट नहीं देखी, कमरों में नहीं देखी, कहीं कचरा नहीं देखा, ये भी नहीं देखा कि हमने कस्सी पर झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ दिख रहे हैं, सिर्फ परियों बहन जी वगैरह को उनकी भीड़, पूरा वातावरण सफेद सफेद, जैसे सफेद सफेद, कितना सुंदर वातावरण। तो ये चीजें कितनी देखती हमको, ये बहुत प्रभावित की। देखिए सब जगह कहीं मैंने तो देखा है, कहीं जिस संस्था में था, प्रशासनिक पद में था, तो कहीं इस टाइप की व्यवस्था हो तो वहां देखिए पुलिस लगी रहती है,
गेट में है पुलिस खड़ी है कि वीआईपी है भाई, इतनी बड़ी संस्था जो कि हजारों एकड़ में फैली हो, हमने तो इस टाइप के आश्रम कहीं नहीं देखा। आज पूरे देश में बहुत योगी वैरागी जटे हुए हैं, कितने कितने ऐसी दुकानें खुली हैं, सब योगा चलाते हैं, एक्सरसाइज का पार्ट बताते हैं, कोई आसन बताता, तो वास्तविक योगा क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि है क्या। आप लोगों ने भी देखा है, यूट्यूब देखते हैं, पर अगर हमारी पॉपुलेशन अगर मान लीजिए 100 है, हम 100 मान के चले कम से कम, या 1000 की माने, तो ऐसे जो लोग हैं कि जो दो चार दस जहां की ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थाएं चलाती हैं, वो योगा के बारे में जानते हैं, बाकी 90% लोग जानते ही नहीं ये क्या है योगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, जो कि अपने को कहता है मैं सनातन धर्मी हूं, सनातन धर्म है, जो आत्मा के बारे में नहीं जानते, परमात्मा के बारे में नहीं जानते, शरीर के बारे में नहीं जानते, योगा क्या करेंगे, पवित्रता क्या है उसके बारे में नहीं जानते। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हम इसको सुझाव भी साथ में देते जाएं कि हम लोगों में इस अवेयरनेस को कैसे लाएं कि लोग इसके प्रति प्रभावित हों, आकर्षित हों, और कम से कम योगा जो है आपका राजयोग, योगा तो बहुत है, तो राजयोग के प्रति आकर्षित हों, प्रमोट हूं, और एक अभियान के रूप में देश में चले, तब हमारी क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है, जो हमारे पास प्रदूषण बढ़ा हुआ है, लाइफ स्टाइल चेंजेज हुए हैं अर्बीकरण के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, जो हमारा प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषित है, वो बीमारियों के जरा अभी ने देखा।
डॉक्टर साहब सॉरी आपको थोड़ा इंटरप्ट करी, थोड़ा सा शॉर्ट में हमें बताइए आपने क्या अनुभव किया है, क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है।
इसमें हमको जो हुआ है, इसमें हमको कैसे सुधार लाना है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमको प्रशिक्षण दिया गया, उस प्रशिक्षण में हमको यह बताया गया है कि हमारा शरीर क्या है, हमारी आत्मा क्या है, हमारी परमात्मा का है, और सबसे बड़ा ब्रह्मा बाबा का रोल क्या है, बाबा ने क्या बताया। बाबा ने सबसे बड़ा मंत्र दिया, मंत्र कि बाबा जो अगर हम करते हैं क्यों करते हैं, बाबा ने स्वतः कहा कि मैं शिव स्वरूप हूं, शिव स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप।
थोड़ा सा समय कमी कम है, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, माफी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे सामने दो वक्ता और बैठे हुए जो अपना
दो मिनट
आएंगे, तो जस्ट एक लाइन।
ये सब चीजें जो हमको ज्ञान दिया, ये बहुत सराहनीय है, हम उसके लिए सभी बहनों को, सभी आयोजकों को, और पूरे यहाँ के प्रशासन तंत्र को, मीडिया को, सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं।
थैंक यू वेरी मच,
साधुवाद देते हैं।
थैंक यू, ओम शांति। अभी हमारे बीच है डॉक्टर उल्लास, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज नागपुर से है आप, और अभी हम सभी ने अपने मेडिकल इसमें फार्माको विजिलेंस वीक मनाया है, तो आप स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी में हैं, और कैसे एक अपना ब्रह्मा कुमार जीवन जीते हुए कैसी सेवाएं कर रहे हैं, साथ साथ अपना जॉब कैसे कर रहे हैं, कैसे स्टूडेंट्स के साथ कैसे उनको संदेश दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल बताएंगे डॉक्टर उल्लास।
ओम शांति।
थोड़ी तालियां बजाइए अच्छे से, ताकि हमारे
दस साल पहले मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा था, और स्पिरिचुअलिटी में मुझे पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं विपश्यना फिर स्वामी विवेकानंद के आश्रम में भी जाता था। वैसे एक स्वामी विवेकानंद का बुक है राजयोग करके, तो राजयोग बुक पढ़ते पढ़ते फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे कहीं राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो फिर मुझे लगा कि कुछ मेडिटेशन सिखाते होंगे, तो मैं फिर औरंगाबाद जब मैं था, जब मैं MD फार्माकोलॉजी GMC औरंगाबाद में जब मैं कर रहा था, उस समय मैं इस राजयोग मेडिटेशन से अवगत हुआ, और जब से मैंने इस मेडिटेशन को सीखा तो अंदर की जो एक प्रकार की स्ट्रेस रहती है ना, जैसे आप किसी काम पे जाते हो या फिर एक अंदर ही अंदर एक छोटा एक स्ट्रेस रहता है जिसका आपको कारण नहीं पता रहता, एंड मेनी टाइम्स यू ट्राई टू सर्च दैट सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो जैसे जैसे मैं फिर उसको करते गया तो मेरा अंदर का जो स्ट्रेस था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अंदर से स्ट्रेस का कारण क्या है। और जैसे ही मेरा जो मेडिटेशन कोर्स हुआ तो मैंने उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं 10 साल से हॉस्टल पे रहता था और आपको पता है कि हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है। और उस समय जिस समय मैं इस राज्य मेडिटेशन से जुड़ा उस समय में भी हॉस्टल पे रहता था। और डेफिनेटली जैसे दीदी ने बताया कि इसमें खाने का बहुत बड़ा रोल है, और मेरी लाइफस्टाइल टोटली अपोजिट थी, क्योंकि मैं 2 से 3 बजे तक रात को सोता था, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ में आप 12-1 बजे भी नहीं सो पाते थे, क्योंकि आपको दोस्त उसमें भी रात को जगा देते थे, है ना। कई सारे लोगों ने हॉस्टल की लाइफ से जी होंगी, और उस समय जब मैं हॉस्टल पे रहता था तो फिर भी मुझे 4 बजे उठना था, है ना, तो मैं 2 बजे सो के भी 4 बजे उठने का प्रयास करता था। और उस हॉस्टल पे रहने के बावजूद भी मैंने खुद से खाना बनाना सीखा, और उस समय तो ज़्यादा कुछ किचन तो नहीं थी क्योंकि सिंगल रूम थी, तो मैं जो इलेक्ट्रिक क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे खुद को परिवर्तन करना है, क्योंकि मेरा एक मेन एम यही था कि मुझे खुद को परिवर्तन करना है, अंदर को जो स्ट्रेस को उसको निकालना है। तो धीरे धीरे फिर मैंने कुकिंग भी सीखा, और हॉस्टल पे रह के मैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे खिचड़ी बनाना या फिर जो भी पॉसिबल है मैगी बनाना, वैसे वैसे धीरे धीरे मैंने हॉस्टल पे रह के मैंने खुद को खाना बनाना सीखा। और हर टाइम मेडिटेशन जाता था, यानी रोज एक घंटा तो मेडिटेशन में जाता ही था, क्योंकि ये एक मैंने देखा कि संघ का रंग तो हमेशा लगता है, है ना। क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा कि मैं हर अल्टरनेट डे पार्टी में जाता था हॉस्टल पे रह के, क्योंकि संघ का रंग लगा हुआ था, दोस्तों के साथ रह रहे के कई सारे बुरी आदतें भी लगी हुई थी। पर जैसे मैं सेंटर पे गया तो मुझे पता चला कि वाइब्रेशंस का कितना असर पड़ता है ना, जैसे अभी आप यहाँ पे अनुभव कर रहे हो कि वाइब्रेशन से हाउ इट्स इजी फॉर यू टू अपलिफ्ट योर मूड और इवन द स्टेट ऑफ माइंड। और जैसे आप बाहर जाओगे, जैसे आप रेलवे स्टेशन तक भी जाओगे, तो यू विल सी द डिफरेंस कि यहाँ के वाइब्रेशन का और बाहर के वाइब्रेशन का कितना असर है। तो डेफिनेटली आपको जो वाइब्रेशन जो वातावरण मिलता है सेंटर पे, उसकी बहुत मदद होती है टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, है ना। जैसे चेंजेस के लिए डेफिनेटली एनर्जी और आपके स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। और अगर आप सोचते भी हो, जैसे मैं सोचता था कि मैं शायद घर पे कर पाऊँ मेडिटेशन, पर कहीं ना कहीं इतना इजी नहीं रहता था घर पे हॉस्टल पे रह के मेडिटेशन करना। तो मैं 1 घंटा तो अवश्य जाता ही था सेंटर पे, आइदर मुरली सुनने या फिर मेडिटेशन करने। तो ऐसे करके मैं 10 साल तक अभी तक काफ़ी मेरे में चेंजेस मैंने अनुभव किए, और विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द वैल्यूज। जैसे आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर और मैं MBBS के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वैल्यूज जो है हर एक के जीवन में वो बहुत कम होते जा रही है। और ये स्पिरिचुअल नॉलेज ही एक ऐसा सोर्स है जिसको हम फिर से हमारे जनरेशन में, आने वाली जनरेशन में फिर से हम वैल्यूज बेस्ड एक सोसाइटी बना सके। तो इससे मुझे जो वैल्यूज की जो नॉलेज है ये काफी हद तक हुई, और वैल्यूज इनकॉर्पोरेट कैसे कर सके इसके भी हमें बहुत मदद मिलती है इस मेडिटेशन के आधार पर। और डेफिनेटली जैसे आप सेंटर पे जाते हो तो संघ का रंग लगता है, जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्तों का संघ के रंग के कारण मेरी एकदम डाउनग्रेड हो गया था। और धीरे धीरे जैसे मैं सिस्टर के साथ संपर्क में आता था, सेंटर के बहनों के साथ जो एकदम डिवाइन रहती थी, तो उनके संपर्क में आके भी जो मेरे चेंजेस थे वो काफी हद तक पॉसिबल लग रहे थे, यानी चेंजेस करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी, है ना। हम सोचते हैं कि हम घर पे कर पाएंगे या फिर, पर डेफिनेटली हमको कहीं ना कहीं जो वातावरण का जो मदद है वो मिलती है। तो कई सारे अनुभव है, पर आपसे भी हम अनुभव सुनना चाहेंगे, और कोई अनुभव सुनाएंगे तो प्लीज़ यू आर वेलकम।
बहुत बहुत धन्यवाद कि हॉस्टल पे रहकर एक MBBS डॉक्टर हमारे, और अभी डॉक्टर्स स्टूडेंट्स को, MBBS स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, और न कि सिर्फ पढ़ाई की लेकिन साथ साथ में क्या सीखा इन्होंने, कुकिंग करना भी सीखा, कि कितना अन्न का अपने मन पर प्रभाव पड़ता है, आपने सुना ही होगा। अभी हम सुनेंगे, हमारे बीच है आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी। आप जैसे बताया कि हमारी वुमेन्स विंग है, जिस प्रकार से ये मेडिकल विंग है वैसे हमारी वुमेन्स विंग है, तो आप हेडक्वार्टर के चेयरपर्सन हो वहाँ के, और आज हमारे बीच में आए हैं। और आपको पता ही है कि नारी शक्ति को कितना एम्पावर कर रहे हैं, ना कि भारत में ही लेकिन देश विदेश में भी सर डॉक्टर सविता जाते हैं और वुमेन्स विंग की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, आज हमारे बीच में है। तो अपने ब्लेसिंग्स डॉक्टर सविता दीदी आप सभी को देंगे।
ओम शांति।
आप सभी भी एक बार फिर से प्यार से बोलिए ओम शांति। यहाँ अभी 48 MBM कॉन्फ्रेंस में आप सभी आए और यहाँ पर आपके लिए सेल्फ डेवलपमेंट और प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट से संबंधित आपके सेशंस होते रहे। पिछले 3 दिनों से मैं समझती हूँ आपने जैसे एक स्टूडेंट लाइफ का अनुभव किया होगा। सुबह से शाम तक पूरी तरह से आप सभी को व्यस्त रखा गया अमृत वेले से, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। तो यहाँ जब हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहला जो हमारा रूट है वो हमारा मन है, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत तो हमारे मन से ही होती है। और आज हमारा मन नेगेटिविटीज से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। टेंशन, एंजाइटी, फियर, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ये सब इतना कॉमन है। और अगर इन सब से हमें अपने आप को परिवर्तन करना है तो ज़रूर हमें अपने मन को समय देना होगा, क्योंकि आज ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं कि कैसे हमारे मन की स्थिति का असर हमारे तन के ऊपर आता है। वो तो आपने पूरे कॉन्फ्रेंस में सुना, लेकिन एक स्टडी हुई थी येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में जहाँ स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्टडी की गई। 20 इयर्स की उनकी एज थी और उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया उनके बिहेवियर के अनुसार, उनकी पर्सनालिटी के अनुसार। पहले ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया गया जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, टेंशन में आ जाते थे, जो धीरज नहीं रख पाते थे, अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाते थे। और दूसरे ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया गया जो इसके ओपोजिट स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, धीरज रख पाते थे, अपने माइंड को एकाग्र कर पाते थे। और उस समय उनका हेल्थ चेकअप किया गया तो देखा कि उस आयु में उन सब का हेल्थ नॉर्मल था, लेकिन स्टडी थी तो एवरी 10 ईयर उनको फॉलोअप के लिए बुलाते थे। तो ये देखा गया कि 50 साल की उम्र तक आते आते जो फर्स्ट ग्रुप था, ए ग्रुप जो था, जो जल्दी टेंशन में आते थे, उनमें दूसरे ग्रुप से 5 गुना ज्यादा साइकोसोमैटिक बीमारियां हो चुकी थी। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया था, किसी को हाइपर एसिडिटी हो चुकी थी, किसी को डायबिटीज हो चुकी थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, किसी किसी को कोई डिप्रेशन से भी गुजर रहा था। तो ये भी देखा गया कि उनके मृत्यु की संभावना भी सेकेंड ग्रुप से 5 गुना ज्यादा थी। तो ये स्टडीज ये सिद्ध करती हैं कि जो हम अपने मन में सोचते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी प्रभावित करते रहते हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो एक डिजीज का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम आज लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। तो फिर अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए जरूर हमें अपने मन को समय देना होगा। तन को स्वस्थ कैसे बनाना है ये तो सब डॉक्टर्स जानते हैं, हम खुद को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं और अपने मरीजों को भी हम स्वास्थ्य देते हैं। लेकिन मन को स्वस्थ रखना है तो फिर मन को भी समय देना होगा और वो समय देना ही मेडिटेशन है। निश्चित है व्यस्त रहते हैं और आज की लाइफस्टाइल तो है ही इसी तरह की, लेकिन व्यस्त रहते हुए, बिजी रहते हुए भी अगर हम 15 मिनट से आधा घंटा भी अपने लिए निकालते हैं रोज। पर कई बार ऐसा होता है कि ठीक है मेडिटेशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, करना है हमें, हम करना शुरू करते हैं लेकिन पता चलता है कि मन तो एकाग्र हो ही नहीं रहा, मन तो लग ही नहीं रहा। हम बैठते हैं योग लगाने के लिए लेकिन कोई काम में मन जा रहा है या पेशेंट्स में ही मन जा रहा है कि ये पेशेंट ऐसा वैसा, क्या करना है, ऐसे करना है। तो कई बार हम सोचते हैं इतना डिफिकल्ट है क्योंकि मन तो सूक्ष्म है, हमारे कंट्रोल में इतना जल्दी नहीं आता है, इतनी गति तेज है हमारे मन की। तो फिर थोड़ा सा निराशा होती है या फिर हम थोड़ा थक करके अभ्यास करना ही जैसे
छोड़ देते हैं कि सुन सकते हैं लेकिन योग अभ्यास करना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि हर चीज जब हम शुरू करते हैं तो वो मुश्किल ही होती है। मानो हम ड्राइविंग सीखते हैं तो क्या एक दिन में हम ड्राइविंग सीख जाते हैं? ड्राइविंग सीखने में भी हमें समय लगता है। वो 15 दिन तो हम ट्रेनिंग में ही रहते हैं, बहुत धीरे धीरे संभल संभल कर स्टीयरिंग पकड़ते हैं। 1 महीना लगेगा जब हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ अब हम ड्राइव कर सकते हैं। और एक बार जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तो आप मोबाइल पर बातें करते हुए या आपस में बातें करते हुए भी ड्राइव कर लेते हैं। या हम अपने प्रोफेशन को ही देखें, जब हम पढ़ कर के प्रैक्टिस में आते हैं तो क्या एकदम प्रैक्टिस करना हमारे लिए आसान होता है? किसी सीनियर के अंडर में ही हम रह कर के वो कॉन्फिडेंस में आते हैं कि हाँ अभी हम कर पाएंगे, ये तो सब पढ़ा था लेकिन करना कैसे है। या कोई दीवार कोई तोड़ता है और उसे तोड़ने के लिए वो 100 हथौड़े लगाता है और 100वें हथौड़े में दीवार टूटती है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि पहले के 99 हथौड़े बेकार गए। हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में जाकर के वो दीवार टूट जाती है। तो इसीलिए अभ्यास हम निरंतर करें तो हर अभ्यास हमारा, भले हमें वो सफलता नहीं मिल रही लेकिन उतना समय कम से कम हमने मन को शांति में ले जाने का प्रयास तो किया। हम अपने मन को स्पिरिचुअल थॉट्स में तो ले गए, क्योंकि योग करना माना मन को वर्ल्डली थॉट्स से निकाल करके स्पिरिचुअल थॉट्स में लाना। जो अभी आपने सीखे, क्या विचार हमें अपने मन को देने हैं, कौन से पॉजिटिव थॉट्स हमें अपने मन में लाने हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही फिर हम फील करते हैं और वही फिर धीरे धीरे हमारा बिहेवियर बनता जाता है। तो वो जब हम रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो फिर हम फील भी करने लगेंगे और वही फिर हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बनने लगेंगे, जो हमारा खुद का भी अनुभव है। तो इसीलिए रोज कुछ समय जरूर निकालें। वो आधे घंटे का समय, जैसे अभी आपको अमृत वेले का महत्व बताया गया, एक बार आपने अभ्यास भी कर लिया यहाँ सुबह उठ करके कि हाँ उठा जा सकता है। अभी तक हम ये समझते हैं कि हमारे लिए असंभव है 4 बजे उठना, हम कैसे उठ सकते हैं, लेकिन हम उठ सकते हैं। चलो 4 बजे रोज नहीं उठ पाते तो 5 बजे या 6 बजे, अगर हमारा उठने का रूटीन थोड़ा लेट है उसको आधा घंटा हम पहले कर लें और वो आधा घंटा उठते ही हम थोड़ा भी फ्रेश होकर के पहले मेडिटेशन करें। हमारे दिन की शुरुआत जब इतनी पॉजिटिव होगी, इतने श्रेष्ठ संकल्पों से होगी, इतने अच्छे विचारों से और डायरेक्ट भगवान के कनेक्शन से होगी, तो पूरे दिन के काम पर उसका असर रहेगा और वही हम अपना फिर एनवायरनमेंट भी बना पाएंगे, चाहे वो हमारी फैमिली में चाहे हमारे वर्क प्लेस में। तो आप सबने अच्छे अच्छे संकल्प किए हैं, सबके अनुभव सुने, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आप सभी ने सुनाए हैं। सभी लेकर के जा रहे हैं यहाँ से, अपने आप को भरपूर करके जा रहे हैं और आशा करती हूँ कि ये आप अपने साथ सदैव बनाए रखेंगे। और फिर नेक्स्ट टाइम जब यहाँ आएंगे तो फिर मेहमान बन करके नहीं आएंगे, बाबा कहते हैं महान बन करके आएंगे और अपने साथ फिर औरों को भी लेकर के आएंगे। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर सविता दीदी जी। हमारी दादी जी हमेशा कहती थी गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ और वापस जल्दी आओ। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है लेकिन अपने साथ प्लस प्लस ना वन और किसी को साथ में लेकर आना है ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। अभी हम परमपिता परमात्मा को थैंक्स देते हुए उन 2 मिनट उनकी याद में बैठे और कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। उसके पूर्व एक सूचना है, कल मॉर्निंग 6:30 का क्लास आपका यही होगा, मॉर्निंग 6:30। अमृत वेला भी होगा ही, अमृत वेला तो है ही कन्फर्म क्लास। अमृत वेला 4:00, 4 बजे और उसके बाद 6:30 का क्लास।